ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को इस सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम है। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। श्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष उड़ान से स्वदेश लाए जाएंगे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि ये विशेष उड़ान दिल्ली जाने से पहले आज सुबह कोच्चि उतरेगी। मृतकों में सबसे अधिक 23 लोग केरल के, 7 तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3, ओडिशा के 2 और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा हरियाणा से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पार्थिव शरीर शीघ्र स्वदेश वापस लाने के लिए कल कुवैत पहुंच गए थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1,563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इंकार किया और कहा कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के 2,00,000 छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य में छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नॉन मुधलवन पहल के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3-स्टार ग्रां प्री जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। श्रुति ने स्लोवेनिया में FEI ड्रेसेज विश्व कप में 67.761 अंक हासिल किए। दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में फाइनल दौर में दिव्या ने बुल्गारिया की बेलुस्लावा क्रस्टेवा को हराया। T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। ओमान की टीम 47 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने केवल 19 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।